मेरे नौजवान मित्रों नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं थोड़े से अलग ही किस्म के एक विषय पर बात करने जा रहा हूं, लेकिन उसका एक रीजन भी है और वह विषय है पितृ सत्तात्मक समाज। लेकिन इससे पहले हम कुछ दूसरी घटनाओं को देखेंगे, दूसरी खबरों को भी देखेंगे। लेकिन दूसरी खबरों पर जाने से पहले मैं आप सबके साथ एक छोटी सी सूचना शेयर करना चाहूंगा। सूचना बहुत छोटी सी है और दोस्तों वो ये है कि AFEIS के YouTube चैनल पर मेरा एक वीडियो रिलीज किया गया है कल, और उसका शीर्षक है कैसे बने थे सुभाष चंद्र बोस IAS। मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसे बने थे सुभाष चंद्र बोस IAS। मैं चाहूंगा कि आप सब समय निकाल करके, एक छोटा सा ही वीडियो है, इसे जरूर देखें। और मैंने बनाया भी आप सबके लिए ही, विशेषकर इसे है। इसके माध्यम से आप शायद ये समझ पाएंगे कि आज से 100 साल पहले भी IAS बनने के लिए कितने जद्दोजहद की जरूरत पड़ती थी, कौन कौन से विषय पढ़े जाते थे, कितनी मेहनत की जाती थी, किस किस तरह की स्थितियां होती थी। और जब आप इन सब बातों को जान लेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आज आपके सामने जो जद्दोजहद होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, जो स्थितियां आती हैं, उन्हें आप अच्छे तरीके से स्वीकार कर पाएंगे। स्वीकार करने का मतलब है कि भैया ऐसा तो होता ही है। जब ऐसा तो होता ही है, अगर आप बरसात हो रही हो और वहां बाहर खड़े हैं तो सिर तो भीगता ही है, तो आप सिर भीगने का अफसोस थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं। आपको या तो भीगना अच्छा लगने लगता है या फिर आप अपने सर को बचाने के लिए ऊपर छाता तान लेते हैं, दो में से कुछ करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इसे स्वीकार कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर आप बहुत ही ज्यादा एक सुकून से भर उठेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो किया ही जाना चाहिए क्योंकि ऐसा तो होता ही है। तो प्लीज, आप सब, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वीडियो को जरूर देखें, और देखने के बाद यदि आप सच में ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि मुझे इन्फॉर्म भी करें, खासकर मेरे इस मकसद के लिए कि शायद मैं अपना मूल्यांकन कर सकूंगा कि मैंने जिस उद्देश्य से यह वीडियो बनाया था वह उस उद्देश्य में मैं सफल रहा हूं या नहीं। दोस्तों, अब मैं कुछ दूसरी खबरों पर आता हूं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा ही है, न्यूज में सुना भी है, दूरदर्शन के चैनल पर भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी हमारे बांग्लादेश की यात्रा पर आज जाने वाले हैं या चले गए हैं। 15 महीनों के बाद, कोरोना का पीरियड था, उनकी पहली यह विदेश यात्रा है, और अपनी इस विदेश यात्रा के लिए उन्होंने अगर बांग्लादेश को चुना है तो डेफिनेटली यह एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए क्योंकि देखिए, जो डिप्लोमेटिक जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो इसी आधार पर निकाले जाते हैं। कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले की बात है, आपने देखा कि जो अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री है ना, वो भारत आ रहे थे। तो ये कहा गया कि जब डिफेंस मिनिस्टर नए जो बने हैं, अभी नई सरकार आने के बाद जब आ रहे हैं, तो उन्होंने भारत को चुना, इसका मतलब है कि हमारी प्रायोरिटी में है। तो अगर प्रधानमंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि भारत की जो नीति है पड़ोसी प्रथम, भारत उसे सिद्ध करके दिखा रहा है। और अवसर तो है ही, बांग्लादेश बनने के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उनको बनाने वाले जो थे शेख मुजीबुर रहमान साहब, उनके जन्म के शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे समय में भारतीय प्रधानमंत्री का जाना साफ साफ तौर पर यह इंडिकेट कर रहा है कि हमारे जो दोनों देशों के बीच के संबंध हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं और भारत बांग्लादेश को कितना अधिक तरजीह देता है। और वैसे भी न्यूज में भी आपने सुना होगा कि जब से शेख हसीना जी आई हैं तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार बेहतर होते ही चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने मैत्री सेतु के बारे में बात की थी, जो फेन नदी पर जो बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अब दोस्तों, केवल मैं ये कहना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में कि जैसे म्यांमार के बारे में मैंने आप सबसे पहले बात करते हुए कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वहां तख्ता पलट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और वो हमारा पड़ोसी देश है। इसी रूप में, चूंकि बांग्लादेश के 50 साल पूरे हो रहे हैं और शुरू से ही हमारे रिश्ते रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी है कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो बांग्लादेश और भारत के संबंध भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन गया है। तो आप इस पर ध्यान रखें, ध्यान दें। अब देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद क्या स्थितियां बनती हैं, तब हो सका तो हम लोग इस पर कुछ और विस्तार से बात करेंगे। रेडियो न्यूज में आपने सुना होगा कि संसद का जो हमारा सत्र था वो समाप्त हो गया है, जो बजट सत्र था। एक स्टेटमेंट दिया हमारे मिनिस्टर जो संसदीय मंत्री हैं कि तीन जो विधेयक थे वो प्रवर समितियों को सौंप दिए गए हैं। प्रवर समितियों, ये प्रवर समिति क्या है? इंग्लिश में सेलेक्ट कमेटी कहलाती है, प्रवर समिति। दोस्तों, जो हमारी संसदीय समितियां हैं इनके बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को याद दिलाना चाहूंगा कि इस पर अलग से एक इंडिपेंडेंट लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है और इस पर बकायदे प्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कभी कभी मेंस में भी पूछ लिए गए हैं। खासकर जैसे प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है, इन सबको लेकर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट समितियां हैं। तो जो प्रवर समिति है, आपने न्यूज में सुना, तो बेहतर होता है तैयारी करने की दृष्टि से कि अगर या तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया है कि हाँ प्रवर समिति ये होती है, अगर नहीं हुआ है तो फिर आपको चाहिए कि आप 5 मिनट निकालें और एक बार अपने किताब नोट्स या जो कुछ भी आपके पास हैं जिनसे आप तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा देख लें कि प्रवर समिति क्या है। रिविजन करने का ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है और ये बिल्कुल लाइव रिविजन हो जाता है, दिमाग में वो चीजें बैठ भी जाती हैं। तो देखिए, जो प्रवर समिति है ये एक तरह की अस्थायी समिति है और खासकर ये अस्थायी समिति दो तरह की होती है, संयुक्त समिति और प्रवर समिति। जो संयुक्त समिति है इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन के सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन जो प्रवर समिति होती है उसमें एक ही सदन के सदस्य लिए जाएंगे, या तो लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य लिए जाते हैं। उनको किसी विधेयक पर विचार करने के लिए सौंप दिया जाता है कि भाई आप इस विधेयक पर विचार करके और हमें अपनी रिपोर्ट दीजिए, क्योंकि देखिए संसद के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो सभी विधेयकों पर बहुत विस्तार के साथ विचार कर सके, उनके पास इसकी विशेषज्ञता भी नहीं होती। तो हमारे यहाँ इसके लिए फिर समितियों की रचना की गई है, तो उसी तरह का है एक प्रवर समिति, तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो एक अच्छा आर्टिकल है राजदीप सरदेसाई का। ये बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन करते हैं। राजदीप सरदेसाई वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं। इन्होंने खासकर अभी जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ जिसके बारे में हम लोगों ने कर चर्चा की थी उसको लेकर के लेख लिखा है। मैं चाहूंगा कि आप सब इसे पढ़ें। हालांकि आपको सीधे सीधे पॉइंट्स सिविल सर्विस के लिए तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सोचने के लिए आपको इसमें बिंदु जरूर मिलेंगे। खासकर पुलिस प्रशासन और राजनीति में जो गठजोड़ की स्थिति है, उस गठजोड़ की स्थिति को लेकर के इन्होंने यह आर्टिकल लिखा है। एक बार आप इसे जरूर पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा उद्वेलित हो सके, कुछ सोचने के लिए मजबूर हो सके। इसी तरह से मैं आपको एक और आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जो दैनिक जागरण में छपा है आंदोलन के ऊपर, और इसे लिखा है भूपेंद्र यादव जी ने। हालांकि आर्टिकल में ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत ही गंभीर किस्म का है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार आपको इसे जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन को लेकर के कई तरह की बातें की जा रही हैं और बहुत ही लंबा आंदोलन चल रहा है, तो हो सकता है कि आंदोलन को आधार बना करके कोई प्रश्न पूछ लिया जाए। हालांकि मुझे मालूम है कि कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो कुछ बातें तो आप अपनी तरफ से लिख ही सकेंगे, लेकिन जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ और तथ्य आपको मिले जो आपके उत्तर को थोड़ा सा वजनी बना देंगे, तो बेहतर होगा कि आप इसे भी पढ़ लें। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर, और वह पितृ सत्तात्मक समाज। इस विषय का चयन मैंने क्यों किया है, बहुत ही स्पष्ट कारण है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने खासकर एक सुनवाई करते हुए जो सेना में जो महिलाओं को जो स्थायी कमीशन दिया जाना होता है नहीं दिए जाने पर टिप्पणी की, और उस टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों के द्वारा और पुरुषों के लिए तैयार किया गया है। पहले उनके कमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, है ना, और खासकर जो स्त्री शक्ति या विमेन एम्पावरमेंट जो आपके सिलेबस में है उसकी जब हम बात करते हैं तो वहां आप इस तरह के रेफरेंसेस शामिल कर सकते हैं, तो इससे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं आपकी अच्छी पकड़ ऐसे विषयों पर है। हमें यहां यह स्वीकार करना होगा कि हमारे समाज का ढांचा पुरुषों के द्वारा और पुरुषों के लिए तैयार किया गया है। कुछ संरचनाएं व्यवस्थाएं सामने से हानि रहित दिखाई दे सकती हैं, पर वे कपटी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का एक संकेत हैं। दोस्तों, ये जो लाइन है कि कुछ संरचनाएं व्यवस्थाएं सामने से हानि रहित दिखाई दे सकती हैं, पर वे कपटी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का एक संकेत हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे होमवर्क के रूप में एक्सेप्ट करें और इस पर अपनी तरफ से टिप्पणी लिखने की कोशिश करें, और बहुत बड़ी नहीं, केवल 200 शब्दों में आप अपनी तरफ से लिखें। इसी कमेंट का एक मैं और छोटा सा हिस्सा बता रहा हूं, आप चाहें तो आप इस पर भी एक टिप्पणी लिख सकते हैं। कानूनों का समान रूप से अनुप्रयोग बहुत दूर है, कानूनों का समान रूप से अनुप्रयोग बहुत दूर है। समानता का सतही चेहरा संविधान में निहित सिद्धांतों के लिए सही नहीं है। समानता का सतही चेहरा संविधान में निहित सिद्धांतों के लिए सही नहीं है। ये उनके कमेंट हैं। देखिए, जब हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज, इसका मतलब है कि ये जो समाज है, इस समाज पर, समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? समाज की जो सबसे छोटी इकाई है वो परिवार है। व्यक्ति तो है ही है, व्यक्ति तो यूनिट है, लेकिन समूह के रूप में परिवार है। तो शुरू से ही भारत में परिवार का जो प्रमुख रहा है वह पुरुष रहा है। तो पुरुष यानी कि पिता, तो पुरुष प्रधान समाज इसीलिए कुछ लोग कह देते, कुछ लोग पितृ सत्तात्मक समाज कह देते। लेकिन इसी के पैरेलल अगर आप जनजातियों में चले जाएंगे तो वहां मातृ सत्तात्मक समाज भी है, मातृ सत्तात्मक समाज। महाभारत में आपको ऐसे उल्लेख मिलते हैं, अर्जुन को कुंती पुत्र कहा गया, कृष्ण को कुंती पुत्र कहा गया, कुंती पुत्र, देखिए मां का नाम लिया जा रहा है ना। तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, लेकिन मूलतः पितृ सत्तात्मक समाज रहा है। तो जब पितृ सत्तात्मक समाज है तो सीधी सी बात है कि पुरुष के हाथ में ही सब कुछ है, उसी का शासन है, तो वो सारी चीजें सारी व्यवस्थाएं इस तरह से करेगा कि वो अपना पक्ष मजबूत बनाएगा और दूसरे का पक्ष कमजोर करेगा। दूसरे का पक्ष का मतलब है महिलाओं का पक्ष। तो उसी ने सब कुछ लिखे, पुराण ये वो सब ग्रंथ उसी ने लिखे, कानून उसी ने बनाए, समाज की व्यवस्थाएं उसी ने की, और उन सारी व्यवस्थाओं में उसने महिलाओं को दोयम दर्जे का बना दिया और अपने को श्रेष्ठ घोषित करके सारे अधिकार अपने पास ले लिए। इसे हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज। इसीलिए दोस्तों, फ्रांस की जो महान लेखिका है सिमोन द बोवार, उन्होंने एक बहुत गजब का स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट था कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, बनाई जाती हैं। तो औरतें, यहां औरत का मतलब शारीरिक रूप से औरतों का नहीं है, उनकी जो मानसिकता है, जो आज उनकी मानसिकता बन गई है, वो पैदा होते ही नहीं है, उनको बनाया गया है। बनाया कैसे गया? सोशलाइजेशन के जरिए, सामाजिकरण के जरिए। समाज ने उन पर जो कुछ थोपना शुरू कर दिया, उनके साथ जो नैतिकताएं और धार्मिक मान्यताएं जोड़ दी, घर में उनको जिस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जा रही है, उनका पालन पोषण जिस तरीके से किया जा रहा है, तो उसके कारण उनकी मानसिकता उसी के अनुकूल बन गई है। अफ्रीका देशों में एक बहुत गजब की कहावत है, और वो कहते हैं कि जब तक शेरों के अपने इतिहासकार नहीं होंगे तब तक शिकारियों की महिमा गाथा गाई जाती रहेगी। यानी कि शेर है और शिकार है, तो देखिए शिकारियों की हम महिमा गाते हैं ना, क्योंकि गाथा कौन लिख रहा है? शिकारी ही लिख रहे हैं, तो वो अपनी गाथा लिख रहे हैं। जिस दिन शेरों के अपने गाथाकार हो जाएंगे, इतिहासकार हो जाएंगे, तो वो शेरों की महिमा लिखेंगे, तब सही मायने में पता लग सकेगा कि सच क्या है। तो दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं पितृ सत्तात्मक समाज। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी है, और महिलाओं पर हर साल मैंने देखा है कि मेंस में 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप इस उद्धरण का प्रयोग अपने उत्तर में कर सकते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब अपनी ओर से देख लेंगे। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं 17 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाली हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन कराया है रवि कुमार यादव ने, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। रवि कुमार, आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में एडमिशन लिया है सुमित कुमार ने। सुमित कुमार, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं प्रीतु ठाकुर, विक्रम ठाकुर, धीरज झा, राहुल सिंह, प्राची दीमरी रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से, राहुल रजक भोपाल से, और सूरज सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, 3 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी। एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, और अपनी ओर से मैं आप सभी को होली की बहुत बहुत हार्दिक पूर्व शुभकामनाएं देता हूं, और साथ ही ये अपील भी करता हूं कि इस बार होली विशेष रूप से आप पूरी शालीनता और सजगता के साथ मनाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा है। अपना ध्यान रखें और अपने साथ के लोगों का भी ध्यान रखें। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।